झलक नवविवाहित जोड़े के सामने जाकर रुकी। उसने पहले आकांक्षा को देखा, फिर सिद्धार्थ की तरफ नजर उठाई और शांत स्वर में बोली, मिस्टर एंड मिसेस सिद्धार्थ खुराना, आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई। मैं आज आपकी नई जिंदगी की शुरुआत पर आपको एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये तोहफा आप दोनों जिंदगी भर याद रखेंगे। इतना सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। मीडिया के कैमरे तुरंत झलक की तरफ घूम गए। सिद्धार्थ की धड़कनें और तेज हो गईं। उसे लगा शायद अब झलक सबके सामने अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन तभी बस बहुत हो गया, रणविजय की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। वो गुस्से से तमतमाता हुआ आगे आया और झलक के सामने खड़ा हो गया। उसने तिरस्कार भरी नजरों से झलक को देखते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे मालूम था कि तू जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगी, लेकिन अफसोस, तू बहुत देर कर चुकी है। अब ये शादी पूरी हो चुकी है और तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो झलक के और करीब आ गया और धीमी लेकिन जहर घोलती आवाज में बोला, तू इससे पहले कि कोई तमाशा करे, आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। आज यहाँ मौजूद मीडिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सभी मेहमान अपनी आंखों से देखेंगे कि तू असल में क्या है। आज के बाद तू किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक भी नहीं बचेगी। ये सुनते ही पूरा हॉल फुसफुसाहट से भर गया। आकांक्षा के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अब रणविजय सब संभाल लेगा। वहीं उर्वशी, नैना और परिवार के बाकी सदस्य हैरानी से कभी रणविजय को देख रहे थे तो कभी झलक को। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान सिद्धार्थ था। उसने तुरंत रणविजय की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये आखिर करने क्या वाला है। दूसरी तरफ रणविजय को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर झलक घबरा जाएगी, लेकिन झलक के चेहरे का एक भी इमोशन नहीं बदला। वो उसी शांत मुस्कान के साथ रणविजय की आंखों में देखती रही। उसकी ये खामोशी ही रणविजय की बेचैनी बढ़ाने लगी। तभी अनामिका रणविजय की ओर घूरते हुए बोली, वाह मिस्टर रणविजय, आखिर ऐसा कौन सा दांव चलने वाले हैं आप। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज तुम लोग कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मेरी तुम्हें खुली चुनौती है, अगर हिम्मत है तो मुकाबला करके दिखाओ। सबसे पहले हम भी देखेंगे कि आखिर तुम्हारा अगला दांव क्या है। अनामिका का गुस्सा पूरी तरह चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन अगले ही पल रणविजय के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां चटकाईं और गहरी नजरों से अनामिका की ओर देखा, मानो बिना कुछ कहे ही उसे चुनौती दे रहा हो, अगर हिम्मत है तो मेरा सामना करके दिखाओ। अगले ही पल हॉल के मुख्य दरवाजे की ओर मौजूद सभी लोगों की नजरें एक साथ घूम गईं। वहां से लगभग 55-60 साल की एक ग्रेसफुल और पावरफुल पर्सनैलिटी वाली महिला अंदर आईं। उनके चेहरे पर एंगर, इंसल्ट और रेस्टलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें देखते ही आदित्य का चेहरा एकदम बदल गया। वो हैरानी से अपनी जगह से खड़ा हो गया। माँ, आप? आदित्य के मुंह से बस इतना ही निकला। उधर झलक भी कुछ पल के लिए चौंक गई। उसने पहली बार आदित्य के चेहरे पर ऐसी घबराहट देखी थी। रणविजय जोर जोर से ताली बजाते हुए बोला, वाह बिल्कुल सही समय पर आई हैं आप। आइए आइए मिसेस राणा, आज आपको अपनी आंखों से वो ट्रूथ देखने का मौका मिलेगा जिसे आपका बेटा आपसे छिपाता रहा। आदित्य ने गुस्से से रणविजय की तरफ देखा। रणविजय, मेरी माँ को यहाँ बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? रणविजय हंस पड़ा। हिम्मत नहीं, मजबूरी थी। आखिर एक माँ को ये तो पता होना ही चाहिए कि उसका बेटा किस लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी लाइफ बर्बाद करने जा रहा है। इतना सुनते ही आदित्य की माँ की नज़र पहली बार झलक पर पड़ी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक झलक को देखा। उनकी आंखों में अपनापन नहीं बल्कि गहरी डिस्गस्ट और नाराजगी थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तो यही है वो लड़की? आदित्य तुरंत अपनी माँ के पास पहुँच गया। माँ प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन मत लीजिए। आदित्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रणविजय ने सख्त आवाज में बीच में टोका, बस आदित्य अब एक शब्द भी नहीं। इतना सुनते ही कविता राणा पूरी तरह भड़क गईं। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ पीछे खींच लिया और आदित्य की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? फिर उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना आदित्य, मैं यहां आने से पहले ही सब कुछ सुन चुकी हूं। रणविजय ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है मिसेज राणा, आखिर आपको ये जानने का पूरा राइट है कि आपका इकलौता बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसका कोई फैमिली नहीं, कोई स्टेटस नहीं और जिसका कैरेक्टर भी सवालों के घेरे में है। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बस रणविजय, एक शब्द और बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन रणविजय रुका नहीं। वो आदित्य की माँ की तरफ देखकर बोला, मैंने आपको सिर्फ यही बताया था कि आपका बेटा एक करीब और कैरेक्टरलेस लड़की के मुंह में अंधा हो चुका है। मुझे लगा
एक माँ होने के नाते आपको ट्रूथ जानने का पूरा हक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। अब डिसीजन आपको करना है। आदित्य की माँ ने गुस्से से झलक की तरफ देखा। उन्हें झलक के पास्ट, उसके स्ट्रगल और उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अगर रणविजय की बातों में जरा सी भी सच्चाई है तो मैं ये रिश्ता कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये सुनकर आदित्य एक पल के लिए शॉक्ड रह गया। वहीं झलक अब भी पूरी तरह काम खड़ी थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, मानो उसे पहले से ही अंदाजा था कि रणविजय ऐसा कोई मूव जरूर चलेगा। रणविजय तुरंत उनके पास आकर खड़ा हो गया और बनावटी दुख भरे स्वर में बोला, जी मिसेज राणा, यही है। इनमें से एक ने आपके बेटे को अपने लव ट्रैप में फंसाया है और दूसरी हर कदम पर इसका साथ देती रही है। मैंने सोचा एक माँ होने के नाते आपको सच जानने का पूरा अधिकार है। ये सुनकर कविता राणा की नजर झलक और अनामिका पर पड़ी। उनके चेहरे का रंग गुस्से से बदल गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो चुका था। कविता राणा ने अपने पावरफुल अंदाज में आगे बढ़ते हुए कहा, मैं कविता राणा हूँ, राणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से चेहरे देखे हैं। कुछ लड़कियां मेहनत करके आगे बढ़ती हैं और कुछ अमीर लड़कों को अपने लव ट्रैप में फंसाकर उनकी दौलत, नाम और स्टेटस हासिल करना चाहती हैं। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। पूरा हॉल खामोश था। आदित्य बीच में आने ही वाला था कि कविता राणा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम चुप रहो आदित्य, अभी मैं बात कर रही हूँ। फिर उन्होंने झलक की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा मेरे बेटे को अपने प्यार का नाटक दिखाकर तुम राणा परिवार की बहू बन जाओगी? तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुम्हारा मकसद प्यार नहीं बल्कि हाई स्टेटस, लग्जरी और दौलत हासिल करना होता है। इतना सुनते ही आकांक्षा के होंठों पर खुशी भरी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन बोली, वाह मजा आ गया, आज पहली बार किसी ने झलक को उसकी औकात याद दिलाई है। नैना ओब्रॉय के चेहरे पर भी सेटिस्फेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ईशान ओब्रॉय की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। ईशान भी मन ही मन खुश था। उसे लग रहा था कि बिना कुछ किए ही झलक की इमेज सबके सामने खराब हो रही है। उधर रणविजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि उसकी पहली चाल पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुकी थी। वो तुरंत बोला, मिसेज राणा, सिर्फ झलक ही नहीं, इसकी बहन अनामिका भी बिल्कुल ऐसी ही है। दोनों बहनें मिलकर अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोगों के करीब पहुंचती हैं। अनामिका भी कबीर के आसपास घूमती रहती है ताकि उसे भी कोई बड़ा सपोर्ट मिल जाए। यही इन दोनों बहनों का पुराना तरीका है। ये सुनते ही अनामिका का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया लेकिन झलक ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। झलक ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपनी आंखों से उसे शांत रहने का इशारा किया। अनामिका ने हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखा। इतना इंसल्ट होने के बाद भी झलक के चेहरे पर ना गुस्सा था ना बेचैनी, वो पूरी तरह काम खड़ी थी।
उसकी आंखों में सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। ये देखकर रणविजय एक पल के लिए फिर उलझ गया। इतनी बेइज्जती के बाद भी ये चुप क्यों है? आखिर ये पलटकर जवाब क्यों नहीं दे रही?